नमस्कार भारत, 14 मार्च दिन सोमवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। कार बम धमाके से दहली तुर्की की राजधानी तो आइवरी कोस्ट में गोलीबारी, बड़ी संख्या में लोग हताहत, एक घायल ने बताई अपनी व्यथा। आरएसएस ने राष्ट्र विरोधी ताकतों से कड़ाई से निपटने की मांग की, आरक्षण का भी मुद्दा उठाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में जेएनयू को लेकर हुए कार्यक्रम में हंगामा, कई घायल, आरोप प्रत्यारोप का दौर।
जैसे ही भाषण शुरू हुआ तो कुछ लड़के लोग जो सामने से पहले नारेबाजी की 1 मिनट और उसके बाद पत्थर फेंकना शुरू किया।
सुनवाएंगे सप्ताह भर के खेलों का हाल और कार्यक्रम में होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुनिए बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अशोक कुमार से। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि उनका देश चरमपंथ के खिलाफ लड़ता रहेगा। ये बात उन्होंने कल राजधानी अंकारा में हुए धमाके में 34 लोगों की मौत के बाद कही है। हाल के महीनों में ये अंकारा में तीसरा धमाका है। एर्दोआन ने कहा कि चरमपंथी आम लोगों को निशाना बना रहे हैं क्योंकि वो तुर्की की सेना के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। तुर्की के सरकारी सूत्र हमले के लिए कुर्द विद्रोहियों की तरफ इशारा कर रहे हैं, हालांकि इस्लामिक स्टेट भी तुर्की में हमले करता रहा है। उधर अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट में अलकायदा से जुड़े एक गुट ने एक बीच रिजॉर्ट को निशाना बनाया है जिसमें 14 आम लोग और 2 सैनिक मारे गए हैं। ये हमला अबिजान शहर के पास ग्रैंड बासम रिजॉर्ट पर हुआ। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई के दौरान 6 हमलावर भी मारे गए। पाकिस्तान के शहर कराची में कल हजारों लोगों ने पंजाब के पूर्व गवर्नर सलमान तासीर की हत्या करने वाले उनके अंगरक्षक मुमताज कादरी को पिछले दिनों फांसी दिए जाने के विरोध में रैली निकाली। तासीर को कादरी ने इसलिए गोली मारी क्योंकि वो ईश निंदा कानून के आलोचक थे। कादरी के समर्थन में रैली निकालने वाले संगठन जमात इस्लामी के प्रमुख नईमुर रहमान कादरी की फांसी को एक न्यायिक हत्या यानी जुडिशियल मर्डर बताते हैं।
हम जो मैदान में निकले हुए हैं इसलिए निकले हुए हैं कि एक छोटी सी लिबरल लॉबी अमरीका के कहने पर, मगरिब के कहने पर, हमारे हुक्मरानों के साथ मिलकर इस मुल्क से इस्लामी कानून का खात्मा चाहती है, दीन को खत्म करना चाहती है, इस मुल्क को सेकुलर और लिबरल बनाना चाहते हैं। हम इनको किसी कीमत पर लिबरल नहीं बनने देंगे। ये मुल्क हमने इस्लाम के लिए बनाया है और ये इस्लाम के नाम पर ही चल सकता है।
उधर सलमान तासीर की बेटी सारा तासीर ने बीबीसी से कहा कि अब पाकिस्तान में उदारवादी लोग अपनी बात कहने में डरते हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जर्मनी के 3 राज्यों में हुए चुनावों में आंशिक नतीजों से पता चलता है कि प्रवासियों का विरोध करने वाली पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है। मध्यपूर्व के प्रवासियों के लिए जर्मनी के दरवाजे खोलने वाली चांसलर अंगेला मर्केल की पार्टी को 2 राज्यों में हार झेलनी पड़ सकती है। पिछले साल जर्मनी में लगभग 10 लाख प्रवासी आए और इसे लेकर मर्केल को घरेलू स्तर पर विरोध झेलना पड़ा। मिस्र के न्याय मंत्री को पैगंबर मोहम्मद के बारे में कही गई अपनी एक टिप्पणी के बाद पद से हटा दिया गया है। एक टीवी कार्यक्रम के दौरान अहमद अल जैंद से पूछा गया कि क्या आप पत्रकारों को जेल में डालेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि अगर पैगंबर भी कानून तोड़ेंगे तो वो उन्हें भी जेल में डाल देंगे। अल जैंद ने शुक्रवार को दिए अपने इस बयान पर माफ़ी मांगी, लेकिन मिस्र के प्रधानमंत्री ने उनसे उनका इस्तीफा मांग लिया। और उधर सऊदी गृह मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि वो लेबनानी शिया गुट हिजबुल्ला के सऊदी समर्थकों को दंडित करेगा। बीबीसी समाचार।
तारीख 14 मार्च दिन सोमवार। नमस्कार भारत में, अभिवादन स्वीकार कीजिए पंकज प्रियदर्शी का। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं लाइव। कल देर रात तुर्की की राजधानी अंकारा धमाकों से दहल गई तो आइवरी कोस्ट में एक पर्यटक स्थल को चरमपंथियों ने निशाना बनाया। अंकारा में कार बम धमाके में 34 लोग मारे गए हैं और कई घायल भी हैं, तो आइवरी कोस्ट में 14 नागरिकों और 2 सैनिकों की मौत हुई है। इन दोनों घटनाओं पर बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्ट का ब्यौरा सुना रहे हैं अशोक कुमार।
एक तरफ तुर्की तो दूसरी तरफ अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट, दोनों ही कल हमले का शिकार हुए। आइवरी कोस्ट के शहर अबिजान में एक रिजॉर्ट पर बंदूकधारियों ने हमला किया तो तुर्की की राजधानी अंकारा फिर चरमपंथियों के निशाने पर थी। अंकारा के मध्य इलाके की जिले में इस कदर जोरदार धमाका हुआ कि आवाज पूरे शहर में सुनाई दी और वहां मौजूद कई वाहनों में आग लग गई और पूरे शहर पर धुएं का गुबार छा गया। धमाके में घायल एक चश्मदीद ने हाल कुछ यूं बयान किया। हम वहीं थे, बस कुछ धीमी हुई, तभी बूम, धमाका हो गया। बस में कुछ लाल लाल दिखाई दिया, आग थी, उसमें दो तीन लोगों की जान चली गई। सब बस से उतर गए, बूम, सब चिल्ला रहे थे और बस से उतर रहे थे। धमाके के बाद जहां अफरा तफरी का माहौल था, वहीं शहर के लोगों में दहशत है। तुर्की में मौजूद बीबीसी संवाददाता मार्क लोवेन का कहना है कि 6 महीने भी नहीं बीते हैं कि अंकारा को तीसरी बार निशाना बनाया गया है। पिछले महीने ही वहां एक सैन्य काफिले पर हमला किया गया जिसमें कम से कम 30 लोग मारे गए थे और इसकी जिम्मेदारी एक कुर्द संगठन ने ली थी। अंकारा में रहने वाले आयकुत अतर कहते हैं, हम तो घबराए हुए हैं, आप जानते ही हैं, जिंदगी तो चलेगी लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं कैसी जिंदगी होगी। हम काम करने जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, पता नहीं आने वाले हफ्तों में क्या होगा। सचमुच बहुत अफरा तफरी है। वहीं आइवरी कोस्ट के अभियान में कल ही बंदूकधारियों के निशाने पर बासम बीच रिजॉर्ट था। राष्ट्रपति अलासाने ओटावारा ने कहा है कि गोलीबारी में कम से कम 16 लोग मारे गए हैं जिनमें 14 आम नागरिक और 2 सैनिक हैं। पिछले 6 महीनों में चरमपंथियों ने पश्चिमी अफ्रीकी देशों के लोकप्रिय पर्यटक स्थलों को निशाना बनाया है। पिछले साल नवंबर में माली में और इस साल जनवरी में बुर्किना फासो में हमले हुए हैं।
चरमपंथियों के निशाने पर तुर्की और आइवरी कोस्ट।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब रुख करते हैं भारत की ओर। मैं जेएनयू बोल रहा हूं, ये था उस कार्यक्रम का नाम जो कल बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर वहां खूब हंगामा हुआ, मारपीट हुई और हिंसा में कई लोग घायल भी हो गए। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। पूरी रिपोर्ट सुनिए मनीष शांडिल्य से।
बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में कल जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के समर्थन और कुछ दूसरे मुद्दों पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान हंगामा हुआ। दरअसल कल मुजफ्फरपुर के आम्रपाली ऑडिटोरियम में मैं जेएनयू बोल रहा हूं नामक कार्यक्रम होना था। आयोजकों में से एक शाहिद कमाल ने बीबीसी को बताया,
नगर निगम का हॉल है, ऑडिटोरियम है, उसको हम लोगों ने 15 दिन पहले दरखास्त दे करके और अलॉट कराया था कि इसमें एक सभा होनी है। फिर हम लोगों ने आज जब सुबह पहुंचे वहां कार्यक्रम के लिए तो वहां देखा कि 8-10 नोटिस टंगी हुई दीवार पर चिपकी हुई है कि भाजपा के एक कार्यकर्ता प्रासर नाम है उनका, उनके दरखास्त पर विचार करते हुए इस हॉल के आवंटन को रद्द किया जाता है। तो उन्होंने तय किया कि ये बाहर में ही हम लोग अपनी सभा शुरू कर देंगे। वो बाहर में हमने शुरू कर दिया, या वो जैसे ही भाषण शुरू हुआ तो कुछ लड़के लोग जो सामने से पहले नारेबाजी की 1 मिनट और उसके बाद पत्थर फेंकना शुरू किया।
लेकिन भाजयुमो के जिला महामंत्री रवि रंजन शुक्ला ने कार्यक्रम पर पथराव किए जाने से इनकार किया है। रवि रंजन का कहना है कि मुजफ्फरपुर की धरती को कलंकित होने से बचाने के लिए कार्यक्रम का विरोध किया गया।
राष्ट्रद्रोही कन्हैया है, उसके पक्ष में लोग जो सेना को कहता है बलात्कारी है, भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारा लगाने वाले लोगों के पक्ष में कार्यक्रम और सफल रूप से अगर मुजफ्फरपुर की धरती पर हो जाता तो मुजफ्फरपुर की धरती, शहीद खुद्दीराम बोस की धरती, जुब्बा सहनी की धरती और मुजफ्फर शाह की धरती कलंकित हो जाता।
हालांकि आयोजकों के मुताबिक विरोध के बावजूद कार्यक्रम लगभग 2 घंटे तक चला, जिसमें अपनी बात रखने वालों में इपवा की सचिव कविता कृष्णन, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष आशुतोष कुमार, कोलकाता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष जगदीश्वर चतुर्वेदी, जेएनयू के प्रोफेसर सुबोध नारायण मालाकार शामिल थे। सुबोध नारायण अभी जेएनयू में कन्हैया कुमार के गाइड भी हैं। घटना के लिए दोनों पक्षों ने अब तक कोई FIR दर्ज नहीं कराई है, लेकिन मुजफ्फरपुर के DM धर्मेंद्र सिंह के मुताबिक घटना के संबंध में FIR दर्ज कर ली गई है और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन एहतियात भी बरत रहा है। मनीष शांडिल, बीबीसी पटना।
जेएनयू का मामला अब भी सुर्खियों में बना हुआ है। कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा में ये मुद्दा भी उठा। संघ की ओर से एक प्रस्ताव सामने आया जिसमें सरकार से राष्ट्र विरोधी ताकतों से कड़ाई से निपटने की मांग की गई। दूसरी ओर कथित बयानों के लिए मीडिया और सोशल मीडिया पर निशाना बनाए जा रहे छात्रों और प्रोफेसरों का आरोप है कि राष्ट्र विरोधी बताकर लोगों को चुप कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट के साथ हैं वात्सल्य राय।
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में करीब 2 महीने पहले शुरू हुए विवाद की गूंज राजस्थान के नागौर में सुनाई दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा में ये मुद्दा प्रमुखता से उठा। 3 दिन की सभा के बाद संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने मीडिया से कहा कि देश के किसी भी हिस्से में देश विरोधी नारे लगेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। उन्होंने इस विवाद के बाद देश भर से आई प्रतिक्रियाओं का भी स्वागत किया।
जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं इस घटना के बाद दिल्ली में अथवा अन्य स्थानों पर जो प्रतिक्रिया दिखाई दी है वो बहुत उल्लेखनीय है, स्वागत योग्य है। मैं समझता हूँ कि समाज मन आज भी उस दृष्टि से जागरूक है, ये अपने लिए एक समाधान की बात है।
जेएनयू में बीती 9 फरवरी को कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाए जाने के बाद छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया गया था। वो फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं। भैया जी जोशी इस विवाद के बाद आई प्रतिक्रियाओं का भले ही स्वागत कर रहे हैं, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया पर आई कई प्रतिक्रियाएं ऐसी हैं जिन्हें लेकर कई छात्र और प्रोफेसर असहज महसूस कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सोशल मीडिया और कुछ टीवी चैनलों पर जो अभियान चलाया गया वो अभिव्यक्ति और बहस को रोकने की कोशिश है। उनका ये भी आरोप है कि राष्ट्र विरोधी का लेबल लगाकर लोगों को चुप कराया जा रहा है। इनमें से एक है प्रोफेसर निवेदिता मेनन, जो सवाल उठाती हैं कि अगर यूनिवर्सिटी में तरह तरह के विचार नहीं व्यक्त किए जाएंगे तो फिर कहां किए जाएंगे। निवेदिता का आरोप है कि उनके साल 2014 के एक भाषण के चुनिंदा अंश को जारी कर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।
एक लेक्चर 40 मिनट का या एक भाषण आधे घंटे का, उसमें एक पूरा संदर्भ होता है, उसको बिल्कुल संदर्भहीन बना के 2-3 शब्द या 2-3 एक वाक्य का आधा भाग या ऐसा चला के ये सोचिए मैं जो भी कह रही हूँ उसको लेके तरह का एक पूरा विछंट चलाना, ये तो कुल मतलब क्या है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी डेमोक्रेटिक।
ऐसी शिकायतें सिर्फ निवेदिता मेनन की नहीं है, वैज्ञानिक और शायर गौहर रजा को भी कथित तौर पर ऐसी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निवेदिता और रजा के समर्थन में बीती 11 मार्च को करीब 250 बुद्धिजीवियों ने एक बयान जारी किया और केंद्र और दिल्ली सरकार से ऐसा अभियान चलाने वाले टीवी चैनल के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की मांग की। मांग पत्र पर दस्तखत करने वालों में शामिल वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण कहते हैं,
जब तक कोई जना ऐसा काम नहीं कर रहा या हिंसा नहीं भड़का रहा तब तक उसको ये कह देना कि भाई ये जो बात कह रहा है ये हमारे राष्ट्रवाद के खिलाफ है इसलिए इसको पीटना चाहिए या इसलिए इसके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए, ये तो फासीवादी तरीका होता है जो कि आरएसएस अपना रही है।
उधर कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये मुद्दा अब सिर्फ वैचारिक मतभेद तक सीमित नहीं रहा है। वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर कहते हैं,
विचारों का मतभेद या जो मनभेद है वो तो एक अलग विषय है, यहाँ समस्या ये है कि एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव इतना ऊपर हो चुका है कि आदमी तार्किक तरीके से सोचने को ही तैयार नहीं है। वो मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, वो चाहे दक्षिणपंथी हो या वामपंथी हो। जेएनयू कैंपस में भी वामपंथियों का जिस तरीके से वर्चस्व रहता है वो हमेशा जो उनके साथ नहीं आता उसमें नीचा दिखाने की प्रवृत्ति रहती है, ये हमारे पुराने अनुभवों से हम देख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से जेएनयू को पूरी तरीके से एक संस्था को राष्ट्र विरोधी बताकर एक हवा बनाई जा रही है ये भी कतई स्वीकार्य नहीं है।
जाहिर है जेएनयू कैंपस से उठे विवाद को लेकर सवाल कई है और सबसे बड़ा सवाल उन तरीकों को लेकर है जिसके जरिए समाधान तलाशने की कोशिश की जा रही है। वात्सल्य राय, बीबीसी दिल्ली।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा उठाया है। संघ की नागौर में हुई प्रतिनिधि सभा के बाद मीडिया से बात करते हुए संगठन के सह कार्यवाह भैयाजी जोशी ने कहा कि जो संपन्न हैं उन्हें अधिकार छोड़ने चाहिए और कमजोर वर्ग की सहायता करनी चाहिए।
समाज का जब संपन्न वर्ग भी आरक्षण की मांग करता है तो एक लगता है कि एक सही दिशा में सोच नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। जो संपन्न है जिन्होंने तो अधिकार छोड़ने चाहिए, समाज के दुर्बल वर्ग की सहायता करनी चाहिए, उसके स्थान पर अपने लिए आरक्षण मांगना मैं समझता हूँ कि अंबेडकर जी के संविधान के द्वारा दिए हुए जो अधिकार है उसके संदर्भ में सोच की कमी है, ऐसा मैं मानता हूँ।
हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद उदित राज से बात की और सबसे पहले यही पूछा कि क्या वो संघ के सुझाव से सहमत हैं।
जो संविधान निर्माता थे, जिस आधार पर आरक्षण दिया था कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़ा है उसको आरक्षण दिया जाना चाहिए, एक तो आधार था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में तय किया मंडल कमीशन को लागू करते हुए कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हो सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, लेकिन आरक्षण फिर भी पूरी तरह से आर्थिक आधार पर नहीं हुआ है। तो न संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से न सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से आर्थिक आधार पर आरक्षण तय किया गया, बल्कि सामाजिक शब्द दोनों में है। तो भैया जी, जोशी जी ने जो बात कही है सही कही है, और यह भी कहा है कि जात के आधार पर जो आरक्षण है वो बना रहना चाहिए, अर्थात जो डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण दिया था वो बना रहना चाहिए, यह उसका मतलब यह भी है।
जिस तरह से अभी हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर आंदोलन चला, उससे पहले गुजरात में पटेल आरक्षण को लेकर आंदोलन चला, और इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है, उसने कहा है कि बजट सत्र के दौरान वो आरक्षण देने के लिए विधेयक लाएगी, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं?
संविधान के मंशानुसार आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा है, यानी उसकी भागीदारी विभिन्न क्षेत्रों में नहीं है, यह तो केवल सीमित क्षेत्र में भागीदारी का हथियार है, वो है सरकारी नौकरियों में, जिनकी भागीदारी उद्योग में, जमीन में, आयात निर्यात में, निजी क्षेत्र में जो शिक्षा है उसमें है, ब्यूरोक्रेसी में भी है, मंत्रिमंडल में भी है, हर जगह भागीदारी आबादी से ज्यादा है। तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि यह क्या उनकी यह मांग सही है।
उदित राज से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी वात्सल्य राय।
वो अपने देवताओं के लिए रोते हैं।
मैं शिव शंकर भोलेनाथ का बाबा, भोलेनाथ का शंकर, इस बाबे का मैं अपनी जान दे सकता हूँ इस बाबे के लिए।
वो अपनी बिखरी धरोहर को सहेजना चाहते हैं।
इसका सारा जो ये मंदिर है ये सारा डैमेज हो गया था, फिर हमने हमारी संस्था ने हमारी।
वो याद करते हैं खौफ भरी रातों को।
अगर बिल्ली भी हमारे ऊपर वाले मंजिल में चल रही होती तो हमें ये लग रहा था कि आ गए वो मिलिटेंट, आ गए तो वो हमें मार डाल देंगे।
और जिन्होंने बंदूक उठाई।
भाई देखिए, मैं तो हर बच्चे से यही कहूंगा, भूल कर भी हथियार मत उठाना, क्योंकि हमने इस जहर को पिया हुआ है। मेरे बच्चों, हमने इस जहर को पिया हुआ है।
पोस्टकार्ड अपनी धरती से उखड़े 5 कश्मीरी पंडितों के।
रक्त रंजित नृत्य करते हर गली चौराहे और सड़क पर लोग खेल खेल में इकट्ठा।
मैं खुद को अपने घर के बरामदे में तैरता सा देखता हूँ।
इनका भी कश्मीर, बीबीसी हिंदी रेडियो की खास पेशकश। सोमवार 14 मार्च से रोजाना शाम 7:30 बजे दिन भर में और सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में।
तो आज शाम से हमारी ये विशेष पेशकश सुनना मत भूलिएगा। और अब जान लेते हैं देश और दुनिया के किन हलचलों पर रहेगी हमारी नजर।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर होंगे और वो बाबा गुरु घासीदास की जन्मस्थली गिनौंद में पुरी में आयोजित मेले में शामिल होंगे। T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत आई पाकिस्तान की टीम आज श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता में अभ्यास मैच खेलेगी। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान आज 51 साल के हो रहे हैं। उनका कहना है कि वो मुंबई में अपनी मां के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सार्क मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज नेपाल रवाना होंगी। हालांकि वहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज से उनकी दोतरफा मुलाकात अभी तय नहीं है। और स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आज संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में सीरियाई शांति वार्ता शुरू हो रही है, जिसमें सरकार और सीरियाई विपक्ष के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।
और अब समय है पाकिस्तान से वसुतुल्लाह खान की डायरी का। न जाने क्यों उन्हें लगता है कि दक्षिण एशिया में आम पुरुष हो या महिला, देहाती हो या शहरी, हिंदू हो या मुसलमान, दोनों तरफ उनका हंसना हराम है, अलबत्ता रोने पर कोई पाबंदी नहीं। ऐसा उन्हें क्यों लग रहा है, चलिए उनसे ही सुन लेते हैं।
मोदी जी और नवाज शरीफ को एक ही चैलेंज का सामना है, एक हाथ से विकास भी करना है और दूसरा हाथ मोदी जी को आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत और नवाज शरीफ को इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद शीरानी के मुंह पे भी रखना है। मौलाना शीरानी कहते हैं कि औरत अगर बनाव सिंघार ना करे, बिला वजह घर से ना निकले और अपने शरीर के उन हिस्सों को छुपा के रखे जिनसे पुरुष बेचैन हो जाता है, तो फिर कामी अपराध भी कम होते चले जाएंगे। श्री मोहन भागवत जी कहते हैं, शहरों में पश्चिमी संस्कृति फैलने की वजह से रेप और गैंग रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, जबकि ग्रामीण भारत में देसी संस्कारों को अब भी महत्वपूर्ण समझा जाता है, इसलिए वहां ऐसे भयंकर अपराध नहीं होते। मौलाना शीरानी कहते हैं, मगरबी तहजीब के पीछे अंधाधुंध भागते रहोगे और इस्लामिक संस्कारों को नहीं अपनाओगे तो समाज नंगेपन और बेगैरती की दलदल में धंसता चला जाएगा। मुझे तो इन महान बुद्धिजीवियों से कोई शिकायत नहीं, शिकायत है तो शेखर कपूर से, जिन्होंने अब तक बैंडेड क्वीन की वीडियो ना मोहन जी को भेजी और ना ही मौलाना शीरानी को। मुझे भारत का तो नहीं मालूम, मगर पाकिस्तान में हर साल 8 से 10 हज़ार रेप और गैंग रेप के केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं होते उनकी संख्या अल्लाह जाने। हर वर्ष 2,500 के लगभग औरतें किसी और के साथ शारीरिक संबंधों के शक में अपने बाप भाई या किसी रिश्तेदार के हाथों कत्ल होती हैं और अक्सर ऐसे केसों को थाने तक पहुंचने से पहले पहले ही दबा दिया जाता है। किसी महिला पर तेजाब फेंकने की सजा मौत है, फिर भी पिछले वर्ष सिर्फ पंजाब में तेजाब मुंह पे फेंकने के 31 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। इनमें से 80% वारदातें छोटे कस्बों और देहातों में होती हैं। ये उस देश का हाल है जिसकी आबादी 20 करोड़ बताई जाती है, भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ तक है। अब आप खुद ही जमा तफरीक कर लें कि वहां महिलाओं के खिलाफ अपराध की छवि पाकिस्तान से कितनी अलग होगी। मोहन भागवत जी हों के मौलाना शीरानी या उनके हजारों लाखों भक्त, एक ही विचारधारा पे खड़ा ये भाईचारा औरत पे ही खत्म नहीं हो जाता। पाकिस्तान में जैसे ही वैलेंटाइन डे या न्यू ईयर आता है, सोशल मीडिया में लाल रंग, गुलाब के फूल और घर से बाहर निकलने वाली नारियों की निंदा शुरू हो जाती है। इस वर्ष तो 2-3 शहरों में सरकारी तौर पे वैलेंटाइन डे पे गुलाब बेचने पे ही पाबंदी रही। भारत का मुझे नहीं मालूम कि वहाँ वैलेंटाइन डे या न्यू ईयर पे लाठी डंडे लेके घूमने वाले जोशीले युवा गैंग क्या क्या करते होंगे। अब तो मुझे लगता है कि दक्षिण एशिया में आम पुरुष हो के महिला, देहाती हो के शहरी, हिंदू हो के मुसलमान, दोनों तरफ उनका हंसना हराम है, अलबत्ता रोने पे कोई पाबंदी नहीं। दोनों देशों को एक ही धर्म और संस्कृति की जैकेट पहनाने वालों ने जोड़ तो रखा है। मौलाना मोहम्मद खान शीरानी हो के मोहन भागवत, नाम में क्या रखा है,
नाम में क्या रखा है। वसतुल्ला खान की डायरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। अशोक कुमार अखबारों के पन्ने पलट के स्टूडियो में आ चुके हैं। अशोक, मुझे पूरा भरोसा है कि संघ की खबरें होंगी।
संघ की खबरें, माल्या की खबर रोज की तरह अखबारों में, और संघ की पोशाक जो बदल गई है उसकी खबरें हर तरफ छपी हैं। बिल्कुल, अभी बताते हैं आपको। हिंदुस्तान लिखता है कि संघ की ड्रेस में निक्कर की जगह भूरी पतलून आई है, तो नई दुनिया कहता है कि संघ ने 90 साल बाद खाकी निक्कर को अलविदा कहा है। सत्ता ने इस पर एक कार्टून बनाया जिसमें संघ प्रमुख से एक मुसलमान व्यक्ति पूछ रहा है, गणवेश के साथ साथ क्या सोच भी बदलेगी। इसके अलावा अमर उजाला, द हिंदू और जनसत्ता जैसे कई अखबारों ने संघ के इस बयान को प्रमुखता दी है कि अमीर तबके के लोग आरक्षण को छोड़ें। राजस्थान के नागौर में हुए सम्मेलन में अपने समापन भाषण में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने फिर कहा कि आरक्षण पर बहस हो और ये सिर्फ बेहद पिछड़े और ज़रूरतमंद लोगों को ही मिले। वहीं माल्या के बयान आज भी सुर्खियों में है। पायनियर की सुर्खी है, माल्या एडमिट्स ही फ्लेड द कंट्री, यानी माल्या ने मान लिया है कि वो देश छोड़कर भागे हैं
और अभी आएंगे भी नहीं।
हाँ, उन्होंने ये कहा कि अभी सही समय नहीं है ये वापस
पता
आने
का, कब उनके लिए माकूल समय होगा।
जी, तो हिंदुस्तान टाइम्स की सुर्खी है जिसमें माल्या कह रहे हैं कि डोंट मेक मी विलेन, आई हैव द बेस्ट इंटेंशंस, यानी मुझे खलनायक नहीं बनाइए, मेरे तो इरादे बहुत नेक हैं।
नायक तो नहीं कहा उन्होंने अपने
हाँ, वो तो शायद यही समझते हैं। नवा टाइम्स की खबर है कि माल्या के खिलाफ अब गैर जमानती वारंट। इसके अलावा अमर उजाला, हिंदुस्तान और नवा टाइम्स में खबर है कि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास चीनी सेना दिखाई दी है। हिंदुस्तान लिखता है कि इससे भारतीय सुरक्षा बलों के कान खड़े हो गए हैं। तो अमर उजाला में ही भाजपा के उत्तर प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का यह बयान है कि यूपी में बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ेगी पार्टी, यानी इसका मतलब है कि अगले साल जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे उनमें पार्टी किसी भी नेता को सीएम पद का उम्मीदवार के तौर पर पेश नहीं करेगी। और इसके अलावा पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का बयान आज सब अखबारों में है कि भारत में उन्हें पाकिस्तान से ज्यादा प्यार मिलता है।
चलिए, अच्छी बात कही उन्होंने। और आज सोमवार है, खेल जगत की साप्ताहिक हलचलों को समेट कर आपके लिए लाए हैं आदेश कुमार गुप्त।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट से। बारिश की रिमझिम बौछारों के बीच कल बांग्लादेश ने आईसीसी विश्व कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट के मुख्य दौर में अपनी जगह पक्की की। बांग्लादेश ने कल धर्मशाला में खेले गए ग्रुप ए के पहले दौर के मुकाबले में ओमान को डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर 54 रन से बात दी। ओमान के सामने 12 ओवर में जीत के लिए 120 रनों का लक्ष्य था, लेकिन वो 9 विकेट खोकर 65 रन बना सका। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने तमीम इकबाल के नाबाद 103 रनों की शतकीय पारी की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 180 रन बनाए। अब सुपर 10 में बांग्लादेश ग्रुप 2 में भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने मुकाबले खेलेगा। वहीं तमाम तरह के अगर मगर किंतु परंतु को समाप्त करते हुए पाकिस्तान की टीम अब भारत में है और वो पूरे जोश के साथ विश्व कप के मुकाबले खेलने को तैयार है। पाकिस्तान अपना पहला मैच 16 तारीख को खेलेगा, जबकि भारत के साथ उसका सामना 19 तारीख को होगा। कल पाकिस्तान के कप्तान शाहिद अफरीदी ने साफ साफ कहा कि भारत में खेलने का रोमांच ही अलग है और भारत में खेलना ही उन्हें सबसे अधिक पसंद है।
अब तो मेरी क्रिकेट खत्म होने वाली है, लेकिन जितनी मैंने इंडिया में क्रिकेट एंजॉय की, बड़े कम मुल्कों में इतनी क्रिकेट एंजॉय की। यहाँ के लोगों से जो प्यार मुझे मेरी पूरी टीम को मिला, वो हमेशा मेरे लिए यादगार रहेगा, सारी जिंदगी याद रहेगा।
और अब बात मुक्केबाजी की। बीते शनिवार की रात को भारत के स्टार मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने अपने चौथे पेशेवर मुकाबले को भी अपने नाम किया। इस बार उन्होंने हंगरी के अलेक्जेंडर होरवात को तीसरे दौर में ऐसे पंच जमाए कि वो दोबारा रिंग में खड़े ही नहीं हो सके। इस जीत से विजेंद्र सिंह के हौसले बुलंद हैं और अब वो भारत के दिल्ली शहर में WBO एशिया बेल्ट के लिए होने वाले खिताबी मुकाबले के लिए जोश से भरे हैं।
100% because it's been you know long time I'm fighting here and almost 6 years I've never fought in India, so it's going to be exciting and
मैं 100% रोमांचित हूं, क्योंकि मैं लंबे समय से लगभग 6 साल से भारत में नहीं खेला हूं। विशेषकर दिल्ली तो राजधानी है और उसके लोगों में मुक्केबाजी को लेकर दीवानापन है। विजेंद्र के शब्द। वैसे विजेंद्र सिंह ने पिछली बार दिल्ली में साल 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया था और वहां उन्होंने कांस्य पदक जीता था। और अब बात बैडमिंटन की। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में कल पुरुष एकल वर्ग का फाइनल 5वीं वरीयता हासिल चीन के लिन डैन ने अपने नाम किया। महिला एकल वर्ग का खिताब 8वीं वरीयता हासिल जापान की नोजोमी ओकुहारा ने 7वीं वरीयता हासिल चीन की सिजियान वांग को 21-11, 16-21, 21-19 से हरा कर अपने नाम किया। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
समय 6:58 का समय है मुख्य समाचारों का।
बीबीसी समाचार। तुर्की की राजधानी अंकारा में कल हुए एक बम धमाके में 34 लोगों की मौत हो गई है। हाल के महीनों में ये अंकारा में तीसरा धमाका है। उधर अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट में अलकायदा से जुड़े एक गुट ने एक बीच रिजॉर्ट को निशाना बनाया, जिसमें 14 आम लोग और 2 सैनिक मारे गए हैं। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 6 हमलावर भी मारे गए। पाकिस्तान के शहर कराची में कल हजारों लोगों ने पंजाब के पूर्व गवर्नर सलमान तासीर की हत्या करने वाले उनके अंगरक्षक मुमताज कादरी को पिछले दिनों फांसी दिए जाने के विरोध में रैली निकाली। और जर्मनी में 3 राज्यों में हुए चुनावों के आंशिक नतीजे बताते हैं कि प्रवासियों का विरोध करने वाली पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं खत्म होता है। स्टूडियो संभाला दीपक जसरोटिया ने, पंकज प्रियदर्शी और अशोक कुमार को अनुमति दीजिए। अब से ठीक एक घंटे बाद 8 बजे विश्व भारती में आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।